नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को बिहार में मतदाता सूची संशोधन कार्य जारी रखने की अनुमति दी। आयोग से कहा, आधार और मतदाता पहचान पत्र सहित प्रमुख पहचान दस्तावेजों को स्वीकार करने पर विचार करें। केंद्र ने बाढ़ भूस्खलन प्रभावित राज्यों को 1,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी करने की स्वीकृति दी। गृहमंत्री अमित शाह ने झारखंड के रांची में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक की अध्यक्षता की। देश में पिछले 11 वर्ष में मछली उत्पादन दोगुना होकर 195 लाख टन हुआ। लॉर्ड्स में भारत के साथ तीसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के पहले दिन मेजबान इंग्लैंड शुरुआती झटकों के बाद बेहतर स्थिति में। और विंबलडन में शीर्ष वरीयता प्राप्त आयना सबालेंका अमांडा अनिसिमोवा महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंची। समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य को जारी रखने की अनुमति दे दी है। एक रिपोर्ट।
सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग से कहा है कि पुनरीक्षण में आधार, राशन कार्ड और मतदाता पहचान पत्र को स्वीकार करने पर भी विचार करना चाहिए। न्यायालय ने कहा कि राज्य में पुनरीक्षण कार्य संविधान के दायरे में है, लेकिन इसके समय पर प्रश्न उठाया है। न्यायालय ने कहा कि ये कार्य बिहार विधानसभा चुनाव के लिए ही क्यों हो रहा है और इसे पूरे देश में लागू क्यों नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने कहा है कि आयोग को अगर नागरिकता की ही जांच करनी थी तो उसे ये कार्य पहले करना चाहिए था। संशोधित मतदाता सूची का मसौदा अगस्त में प्रकाशित किया जाएगा। न्यायालय ने आयोग को 1 सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
इस बीच आधिकारिक सूत्रों के अनुसार निर्वाचन आयोग विशेष गहन पुनरीक्षण के पृष्ठ 16 के अनुसार पहले से ही आधार को पहचान पत्र के रूप में स्वीकार कर रहा है। निर्वाचन आयोग ने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के अंतर्गत बिहार में अब तक 5,22,00,000 से ज्यादा मतदाता गणना प्रपत्र एकत्र किए जा चुके हैं, जो कुल प्रपत्रों का 66% से ज्यादा है। आयोग ने उम्मीद जताई है कि गणना प्रपत्र एकत्र करने का काम इस महीने की 25 तारीख की निर्धारित तिथि से पहले ही पूरा हो जाएगा। बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि विपक्ष इस मामले में संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ भ्रम फैला रहा है।
SIR किसी जाति, पार्टी या व्यक्ति का या किसी धर्म का चिन्हित करके किया जा रहा है क्या? ये चुनाव आयोग एक तरफ कहते हैं संविधान में विश्वास है, दूसरे तरफ संवैधानिक संस्था का अपमान करते हैं। और अगर जो 100% मतदान हो, मतदाताओं की जागरूकता उत्पन्न हो, सबको वोटिंग में अधिकार मिले, कोई छूटे नहीं, ये जागरूकता में इनको आपत्ति क्यों है? संविधान के विरुद्ध क्यों बार बार भ्रम फैलाते हैं? संवैधानिक संस्था का अपमान क्यों करते हैं? ये दुर्भाग्यपूर्ण है।
केंद्र सरकार ने बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, केरल और उत्तराखंड को 1,066 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी करने की मंजूरी दे दी है।
गृह मंत्रालय के अनुसार असम के लिए 375 करोड़ रुपए, मणिपुर के लिए 29 करोड़, मेघालय के लिए 30 करोड़, मिजोरम के लिए 22 करोड़, केरल के लिए 153 करोड़ और उत्तराखंड के लिए 455 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है। इस वर्ष केंद्र सरकार ने राज्य आपदा राहत कोष से 14 राज्यों को 6,166 करोड़ रुपए से अधिक और राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष से 12 राज्यों को 1,988 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि जारी की है। इसके अलावा राज्य आपदा न्यूनीकरण कोष से 5 राज्यों को 726 करोड़ रुपए से अधिक जारी किए गए हैं। इस समय बचाव और राहत कार्यों के लिए 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की 104 टीम तैनात हैं। भूपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
गृहमंत्री अमित शाह ने रांची में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, बिहार के उपमुख्यमंत्री और पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री सहित वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। श्री शाह ने कहा कि नक्सलवाद के विरुद्ध सभी राज्यों की एकजुटता और सुरक्षा बलों की बहादुरी से हमें अभूतपूर्व सफलता मिली है। उन्होंने अगले वर्ष 31 मार्च तक देश को नक्सलवाद से मुक्त कराने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि इंद्रपुरी बांध सागर जलाशय के मामले को सुलझा लिया गया है।
775 MAF पानी डिस्चार्ज होता है, उसमें से लगभग 5.75 बिहार को मिलेगा और 2.0 MAF झारखंड को देने का निर्णय लिया गया है। बांध सागर इंद्रपुरी जलाशय ये लंबे समय से विवाद में था, इसको सबकी सहमति हो गई।
पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने कहा कि बैठक में गृहमंत्री ने राज्यों के बीच समन्वय स्थापित कर लंबित विषयों का समाधान निकालने पर बल दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत में स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता में 4000% की वृद्धि हुई है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि देश की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता अब 227 गीगावाट हो गई है। श्री गोयल ने कहा कि भारत पेरिस समझौते के अंतर्गत अपने निर्धारित योगदान को पूरा करने वाला पहला G20 देश बन गया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में विश्वविद्यालय महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। गुजरात में एक समारोह में श्री प्रधान ने कहा कि पिछले एक दशक में देश के उच्च शिक्षा ढांचे में बड़ा परिवर्तन आया है।
जब अगर हम पिछले 10 साल की 11 साल की समीक्षा करते हैं 2014-15 की बेसलाइन डाटा से, आज हम लोगों की 30% इंक्रीज हुई है उच्च शिक्षा की पार्टिसिपेशन, उसमें से महिलाओं की सबसे ज्यादा हुई है 38%। हमारी PhD स्कॉलर्स की संख्या बढ़ी है। हमारी शेड्यूल ट्राइब स्टूडेंट्स की 14 की तुलना में अभी 10% ग्रोथ हुई है। SC की शेड्यूल कास्ट की हमारी 8% ग्रोथ हुई है।
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि एक वैश्विक शक्ति के रूप में भारत के उत्थान के साथ साथ उसके बौद्धिक और सांस्कृतिक महत्व में भी वृद्धि होनी चाहिए। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री धनखड़ ने बौद्धिक और सांस्कृतिक उत्थान को बहुत महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि इसके बिना ये उत्थान टिकाऊ नहीं होगा और ये देश की परंपराओं के अनुकूल नहीं है।
India's rise as a global power must be accompanied by the rise of its intellectual and cultural gravitas. This is very significant. Rise without this is not lasting. Rise without this is not in harmony with our traditions. The strength of the nation inhabits in its originality of its thought, the timelessness of its values, and the resilience of its intellectual traditions. That is the kind of soft power.
भारत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घाना, त्रिनिदाद और टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया की यात्रा को बेहद सफल बताया है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आतंकवाद के मुद्दे पर वैश्विक स्वीकृति स्थापित की गई।
आतंकवाद के विषय पर एक वैश्विक स्वीकार्यता प्रधानमंत्री जी के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर स्थापित हुई, जब ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आतंकवाद वाले विषय के ऊपर न सिर्फ सर्वसम्मति के साथ भारत के पक्ष का अनुमोदन हुआ, बल्कि प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा कि आतंकवाद के पीड़ित और आतंकवाद के प्रायोजक को एक तराजू पर नहीं तौला जा सकता।
ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। भारत का मछली उत्पादन 11 वर्ष में दोगुना से अधिक होकर 195 लाख टन हो गया है। ये केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई देश की नीली क्रांति की सफलता को दर्शाता है। भुवनेश्वर में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने अंतर्देशीय मत्स्य पालन और जलीय कृषि में 140% वृद्धि होने का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि भारत का समुद्री खाद्य निर्यात 60,500 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। गुजरात सरकार ने वडोदरा के मुजपुर गंभीरा पुल हादसे की प्रारंभिक जांच के आधार पर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की है। राज्य सरकार ने सड़क और भवन विभाग के कार्यकारी अभियंता, 2 उप कार्यकारी अभियंताओं और सहायक अभियंता को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इस बीच हादसे में मृतकों की संख्या 15 हो गई है। मौसम विभाग ने कहा है कि देश के उत्तर पश्चिमी हिस्से में अगले 2-3 दिन के दौरान बहुत तेज वर्षा जारी रहने की आशंका है। मध्य भारत में अगले 4-5 दिन के दौरान बहुत तेज वर्षा जारी रहेगी। पूर्वोत्तर भारत में अगले 7 दिन के दौरान गरज के साथ वर्षा होने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़ और झारखंड में भी कल मूसलाधार वर्षा की संभावना है। पूर्वी राजस्थान में कल बहुत तेज वर्षा का अनुमान है। हिमाचल प्रदेश से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राजधानी शिमला सहित राज्य के अधिकतर हिस्सों में लगातार तेज बारिश जारी है।
हिमाचल प्रदेश में इस मानसून की असामान्य वर्षा के चलते अब तक बादल फटने की 22, फ्लैश फ्लड की 31 और भूस्खलन की 17 घटनाएं दर्ज की गई हैं। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक मानसून सीजन के दौरान अब तक वर्षा जनित हादसों में प्रदेश भर में मरने वालों की संख्या बढ़कर 91 हो गई है। 131 लोग घायल हैं जबकि 34 लोग अभी भी लापता हैं। प्रदेश में एक नेशनल हाईवे समेत 207 सड़कें बंद हैं। इसके अलावा 132 बिजली ट्रांसफार्मर और 812 पेयजल योजनाएं भी प्रभावित हुई हैं। इस आपदा में 432 घर पूरी तरह जबकि 928 घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने अगले 24 घंटों में प्रदेश में भारी बारिश की संभावना जताई है और 16 जुलाई तक प्रदेश में भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
मध्य प्रदेश में भी लगातार बारिश हो रही है। एक रिपोर्ट।
मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए सिंगरौली, शहडोल, बालाघाट सहित 9 जिलों में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के अन्य सभी जिलों में भारी वर्षा के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार 14 जुलाई तक प्रदेश में बारिश का दौर जारी रहेगा। इस बीच दमोह जिले में एक दिन में 4 इंच बारिश दर्ज की गई, वहीं शिवपुरी में 3 इंच, ग्वालियर और रीवा में 2.5 इंच बारिश रिकॉर्ड की गई। मंडला जिले में 18 जून से अब तक करीब 32 इंच बारिश हो चुकी है। प्रशांत शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
विंबलडन में महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में अमेरिका की अमांडा एनिसिमोवा एरिना सबालेंका को हराकर फाइनल में पहुंच गई हैं। दूसरे सेमीफाइनल में पोलैंड की इगा स्वियाटेक का सामना स्विट्जरलैंड की बेलिंडा बेंचिच से होगा। लॉर्ड्स में भारत के साथ तीसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने ताजा समाचार मिलने तक 4 विकेट पर 172 रन बना लिए हैं। शुरुआती 2 विकेट जल्दी गिरने के बाद ओली पोप और जो रूट ने तीसरे विकेट के लिए 109 रन की साझेदारी कर टीम को बेहतर स्थिति में पहुंचाया। इससे पहले इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। जसप्रीत बुमराह की इस मैच में वापसी हुई है। 5 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर हैं। आषाढ़ पूर्णिमा के अवसर पर भगवान शिव की केसरिया वस्त्रधारी चांदी की गदा यानी छड़ी मुबारक पहलगाम पहुंच गई है। इसके साथ ही वार्षिक अमरनाथ यात्रा से जुड़ी सदियों पुरानी परंपराओं की औपचारिक शुरुआत हो गई। इस बीच वार्षिक अमरनाथ यात्रा के 8वें दिन आज शाम तक 1,43,000 से अधिक यात्रियों ने पवित्र गुफा के दर्शन किए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को बिहार में मतदाता सूची संशोधन कार्य जारी रखने की अनुमति दी। आयोग से कहा आधार और मतदाता पहचान पत्र सहित प्रमुख पहचान दस्तावेजों को स्वीकार करने पर विचार करें। केंद्र ने बाढ़ और भूस्खलन प्रभावित राज्यों को 1,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी करने की स्वीकृति दी। गृहमंत्री अमित शाह ने झारखंड के रांची में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक की अध्यक्षता की। देश में पिछले 11 वर्ष में मछली उत्पादन दोगुना होकर 195 लाख टन हुआ। लॉर्ड्स में भारत के साथ तीसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के पहले दिन मेजबान इंग्लैंड शुरुआती झटकों के बाद बेहतर स्थिति में और अमांडा एनिसिमोवा विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।